بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आप सभी का सभा में स्वागत है। आज रविवार है, मई की 29, शव्वाल की 27 और खुर्दाद माह की 8 तारीख। कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर सकते हैं आप। पहले हम आपको विश्व समाचार सुनवाएंगे, फिर अनमोल बातें नामक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। इसके उपरांत राजनीतिक चर्चा होगी। राजनीतिक चर्चा के पश्चात साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, कुरान, ईश्वरीय चमत्कार और आजकल। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको ये बताते चलें कि हमारे इस कार्यक्रम को आप वेबसाइट पर अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं, parstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति की ईरान यात्रा में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ज़ायोनियों ने फ्लैग मार्च निकालकर मस्जिदुल अक्सा का अनादर किया। बाइडेन ने अमेरिका में बढ़ती हिंसा की बात को स्वीकार किया है। राष्ट्रसंघ ने तहरीके तालिबान को पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बताया है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रविवार को तेहरान पहुंचे हैं। इमाम अली रहमान का मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान के ऊर्जा मंत्री ने स्वागत किया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एक आर्थिक एवं राजनीतिक शिष्टमंडल के साथ ईरान पहुंचे। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने सितंबर 2021 को ताजिकिस्तान की राजधानी की यात्रा की थी। उनकी इस यात्रा के दौरान ईरान तथा ताजिकिस्तान के बीच 8 सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की 2 दिवसीय ईरान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में परस्पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। ईरान की सरकार ने 29 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। खुजिस्तान प्रांत के आबादान नगर में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के बैठ जाने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और ईरान की सरकार ने शोकाकुल परिवार के प्रति एक बार फिर सहानुभूति जताई है। हताहत होने वाले व्यक्तियों, उनके परिजनों और खुजिस्तान, विशेषकर आबादान नगर के लोगों से सहानुभूति जताने और उनके सम्मान में आज के दिन को पूरे देश में सार्वजनिक शोक के दिवस में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के विरोध और फिलिस्तीनी गुटों की चेतावनियों के बावजूद ज़ायोनियों ने फ्लैग मार्च निकाला और मस्जिद उल अक्सा में काफ़ी हंगामा किया। इस हंगामे से इस पवित्र स्थल पर एक बार फिर अनादर हुआ है। फ्लैग मार्च को देखते हुए इसराइल ने मार्च के रूट पर सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए थे, जबकि अमरीका जैसे इसराइल के निकटवर्ती घटकों ने फ्लैग मार्च पर उससे पुनर्विचार करने की अपील की थी। लेकिन इसराइल में कट्टरपंथी धड़ा हावी है और उसने सारे विरोधों और चेतावनियों की अनदेखी करते हुए आज फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा घेरे में अतिग्रहणकारी बस्तियों के निवासियों ने फ्लैग मार्च के नाम पर मस्जिद उल अक्सा की ओर पैदल मार्च किया। इसके शुरू से ही ज़ायोनी कट्टरपंथी भड़काऊ कार्रवाइयां कर रहे थे। पिछली रात से ही मस्जिद उल अक्सा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण बने हुए थे और ज़ायोनी बस्तियों के निवासियों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में वर्दीधारी आतंकियों को तैनात किया गया था। एक और सूचना के अनुसार मस्जिद उल अक्सा में उपासना में व्यस्त फिलिस्तीनियों को उनकी जगहों पर बंद कर दिया गया। इसराइलियों के फ्लैग मार्च के अवसर पर फिलिस्तीनियों ने मिसाइल का परीक्षण किया है। ज़ायोनी मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुट हमास ने ज़ायोनी चरमपंथियों के फ्लैग मार्च के अवसर पर मिसाइल का परीक्षण किया है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार अलमयादीन के हवाले से बताया गया है कि हमास ने गजा में समुद्र में 8 मिसाइलें दागी। उधर हमास का कहना है कि फ्लैग मार्च का मुकाबला करने के लिए उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख का कहना है कि प्रतिरोध के पास ज़ायोनियों के फ्लैग मार्च का मुकाबला करने के लिए बहुत अधिक ऑप्शन मौजूद हैं। ओमान के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि उनका देश कभी भी इसराइल के साथ साठ गांठ नहीं करेगा। बद्र अल बूसईद ने रविवार को फ्रांसीसी समाचार पत्र ली फिगारो को दिए इंटरव्यू में कहा है कि फार्स की खाड़ी के तटवर्ती देशों में ओमान ही वो देश है जिसने सन 1979 में कैंप डेविड समझौते के समय इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच होने वाले समझौते का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि ओमान कभी भी इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य नहीं बनाएगा, क्योंकि हम उसी योजना का समर्थन करते हैं जिसे फिलिस्तीनियों का समर्थन हासिल हो। ओमान के विदेश मंत्री का कहना था कि कोई भी समझौता दो देशों के आधार पर होना चाहिए जो फिलिस्तीनी समस्या के स्थायी समाधान के परिप्रेक्ष्य में हो। अलबू सईद का कहना था कि वर्तमान समय में अमरीका पश्चिमी एशिया में अपने सैन्य बलों में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा है, किंतु वो यहां से जाने वाला नहीं है। कुछ अरब देशों ने इसराइल के साथ ऐसी स्थिति में अपने संबंध सामान्य किए हैं कि जब वो आए दिन फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयां करता रहता है। सन 1967 से लेकर 2018 के बीच इस शासन ने 45,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्याएं की। इस दौरान घायल होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत अधिक है। अमरीकी राष्ट्रपति ने इस देश में बढ़ती हिंसा को स्वीकार करते हुए इस पर चिंता जताई है। जो बाइडन ने डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान अमेरिका में बढ़ती हिंसा और हिंसक कार्रवाइयों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि गोलीबारी और लोगों की हत्याएं अमेरिका में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बाइडन ने हाल ही में अमेरिका में होने वाली गोलीबारी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समय जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक इसी समय स्कूल में होने वाली गोलीबारी की घटना में मारे गए बच्चों के माता पिता उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उनका कहना था कि देश में हिंसा और डर बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों में रोष पाया जाता है। इससे पहले अमरीका की उपराष्ट्रपति ने इस देश में हालिया दिनों के दौरान होने वाली गोलीबारी की निंदा करते हुए कहा कि ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि हमको इस समय पूरे देश में घृणा से भरा हुआ वातावरण देखने को मिल रहा है। अमरीका के टेक्सास राज्य में हुई गोलीबारी में 19 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत के बाद अमरीका में बंदूकों की बिक्री को नियंत्रित करने की चर्चा फिर तेज हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता ने बंदूक नियंत्रण के विचार को एक बेतुका तर्क देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद विमानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो ऐसे में इस घटना के बाद बंदूकों पर नियंत्रण लगाने का क्या औचित्य बनता है। लॉरेन बॉयबर्ट ने यह टिप्पणी फॉक्स न्यूज के हैनिटी स्पेशल कार्यक्रम में दी। इंटरनेट पर रिपब्लिकन नेता के बयान की काफी आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि पाकिस्तान की तहरीके तालिबान ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राष्ट्र संघ के अनुसार अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद पाकिस्तान के तहरीके तालिबान ही इस समय पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के निरीक्षण दल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के तहरीके तालिबान के हजारों सदस्य अफगानिस्तान की सीमा के निकट सक्रिय हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान का ये गुट अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति का बहुत दुरुपयोग कर रहा है। इस गुट के सदस्यों ने हालिया दिनों के दौरान पाकिस्तान में कई हिंसक एवं आतंकी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। विशेष बात यह है कि इस गुट के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, जिसके कारण उसके फलने फूलने की संभावना बहुत अधिक है। दक्षिणी कोरिया के रक्षा मंत्री ने अपने उत्तरी पड़ोसी देश को हर प्रकार के उकसावे वाली कार्रवाई के प्रति सचेत कर दिया है। ली जोंग सूप ने दक्षिणी कोरिया की सेना से कहा है कि उत्तरी कोरिया की ओर से की जाने वाली हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दक्षिणी कोरिया के रक्षा मंत्री ने इस देश की थल सेना के नए प्रमुख की नियुक्ति के समय कहा कि यदि उत्तरी कोरिया की ओर से किसी भी प्रकार की उत्तेजित कार्रवाई अंजाम दी जाती है तो फिर अपनी सुरक्षा करते हुए हमें कड़ा जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने हालिया सप्ताह के दौरान उत्तरी कोरिया की ओर से मिसाइल फायर किए जाने की ओर संकेत किया और कहा कि प्योंगयांग कोरिया प्रायद्वीप की शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बावजूद रूस की गैस अब भी यूक्रेन के ही रास्ते यूरोप भेजी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसी के साथ यूरोपीय देश रूस से गैस आयात को रोकने के प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु ताज़ा समाचार ये है कि यूरोप के लिए यूक्रेन के रास्ते अब भी रूसी गैस की सप्लाई जारी है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बावजूद अब भी यूक्रेन रूसी गैस के निर्यात के मुख्य मार्ग के रूप में सक्रिय है। रूस की तेल कंपनी गैसप्रोम ने घोषणा की है कि इस कंपनी की गैस के निर्यात में विघ्न नहीं आया है, बल्कि शनिवार को इसमें कुछ वृद्धि हुई है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सर्विस है।
अनमोल बातें
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई कहते हैं कि फिलिस्तीनी युवा आज अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के प्यासे हैं। फिलिस्तीन में हमास और जिहाद इस्लामी और लेबनान में हिजबुल्ला ने सभी लोगों पर अपना तर्क सिद्ध कर दिया है। इसी तरह सुप्रीम लीडर का मानना है कि यूरोपीय सरकारों को महान संघर्ष करने वाले हिजबुल्ला को गैर कानूनी करार नहीं देना चाहिए। गैर कानूनी अमरीकी सरकार की तरह है जिसने दाइश का गठन किया है। दुनिया नहीं भूली है और ना ही भूल पाएगी। जिस दिन ज़ायोनी सेना ने लेबनानी सीमा को रौंद दिया और बेरूत में घुस गई, जिस दिन एरियल शारोन नामक हत्यारे और अपराधी ने सबरा और शतीला में खून की नदियां बहा दी, फिलिस्तीनी युवा ना भूले हैं और ना भूलेंगे उस दिन को जब इसी सेना के पास हिजबुल्ला के भीषण हमले की वजह से ज्यादा नुकसान उठाने और पराजय की बात स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेबनान की सीमा से पीछे हटने और युद्ध विराम स्वीकार करने की अपील करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भरे हाथ और मजबूत स्थिति यानी यही है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि अच्छा अब ये छोड़िए कि फलां यूरोपीय सरकार जो सद्दाम शासन को रासायनिक पदार्थ बेचने की वजह से हमेशा लज्जित हो, हिजबुल्ला और उसके संघर्षकर्ताओं को गैर कानूनी करार दे। गैर कानूनी अमरीकी सरकार की तरह है, जिसने दाइश का गठन किया इसी सरकार की तरह यूरोपीय सरकारें हैं, जिसने ईरान और इराक के हलबचा में हजारों लोगों को रासायनिक हमलों की वजह से मौत की नींद सुला दिया। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि उच्च मार्ग की ओर बढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसमें पहला हरकत के लिए मकसद और मार्गदर्शन के लिए दिशा निर्धारण है, जो दोनों ही नमाज में साक्षात नजर आते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि वो विशेषता जो ईश्वर एक ईश्वरवादी के लिए सबसे पहले बयान करता है वो ये है कि जिन लोगों को जमीन में अख्तियार दिया गया है उन्होंने नमाज स्थापित की, ये नमाज का महत्व है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो दो चीजें हैं। एक उद्देश्य, ये वही आंतरिक शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ाती है और उसे आगे चलाती है। दूसरी चीज वो कुतुब नुमा है, जिससे इंसान मार्गदर्शन के तारे को नहीं और रास्ते से नहीं भटकता। अगर उद्देश्य न होता तो इंसान बीच मझदार में ही रह जाता, बहुत ज्यादा परेशानी होती। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि एक ईश्वरवादी समाज की स्थापना, लोगों के बीच न्याय की स्थापना, आंतरिक इच्छाओं के इन भीषण तूफानों के बीच हक और सत्य का तंबू लगाना आसान काम नहीं है। ईश्वर से मदद मांगना, अल्लाह के लिए काम करना, वो किबला नुमा या किबला फाइंडर का भी मतलब काम पर ध्यान देना है। ये कि हमारा मकसद शक्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, आंतरिक इच्छा नहीं है, व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, विभिन्न राजनीतिक ख्वाहिशें नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य ईश्वर है। ये दोनों विशेषताएं, ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व यानी उद्देश्य और दिशा निर्धारण नमाज में साक्षात नजर आते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ, हमें अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। फ्लैग मार्च को देखते हुए इसराइल ने मार्च के रूट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे, जबकि अमेरिका जैसे इसराइल के निकटवर्ती घटकों ने फ्लैग मार्च पर पुनर्विचार करने की अपील की थी, लेकिन इसराइल में कट्टरपंथी धड़ा हावी है और उसने सारे विरोध और चेतावनियों की अनदेखी करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान शनिवार को एक शिष्टमंडल के साथ अजरबैजान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर होने वाले समारोहों और बाकू में होने वाले टेक्नो फेस्ट में भाग लेने के लिए बाकू पहुंचे हैं। भारत नियंत्रित कश्मीर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य होने वाली झड़प में कम से कम 2 अलगाववादी मारे गए। पुलिस ने बताया है कि मारे जाने वाले अलगाववादी हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे।
अदालत ने ये फैसला दिया, इंसानियत।
फ्लैग मार्च को देखते हुए इसराइल ने मार्च के रूट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे, जबकि अमेरिका जैसे इसराइल के निकटवर्ती घटकों ने फ्लैग मार्च पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। लेकिन इसराइल में कट्टरपंथी धड़ा हावी है और उसने सारे विरोध और चेतावनियों की अनदेखी करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। समीक्षा पेश के साथ ही अख्तर अब्बास।
पूरी दुनिया के विरोध और फिलिस्तीनी गुटों की चेतावनियों के बावजूद ज़ायोनियों ने फ्लैग मार्च निकाला और मस्जिदुल अक्सा में काफी हंगामा किया और इस पवित्र स्थल का एक बार फिर अनादर हुआ। फ्लैग मार्च को देखते हुए इसराइल ने मार्च के रूट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे, जबकि अमरीका जैसे इसराइल के निकटवर्ती घटकों ने फ्लैग मार्च को निकालने के बारे में पुनर्विचार करने की अपील की थी। लेकिन इसराइल में कट्टरपंथी धड़ा हावी रहा और उसने सारे विरोध और चेतावनियों की अनदेखी करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा घेरे में अतिगणकारी बस्तियों के निवासियों ने फ्लैग मार्च के नाम पर मस्जिदुल अक्सा की ओर पैदल मार्च किया और मार्च के शुरू से ही ज़ायोनी कट्टरपंथी भड़काऊ कार्रवाइयां करते नजर आए। पिछली रात से ही मस्जिदुल अक्सा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण थे और ज़ायोनी बस्तियों के निवासियों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में वर्दी धारक आतंकियों को तैनात किया गया था। एक और सूचना के अनुसार मस्जिदुल अक्सा में एतिकाफ पर बैठे फिलिस्तीनियों को उनकी जगहों पर बंद कर दिया गया था। कट्टरपंथी इसराइलियों के फ्लैग मार्च का फिलिस्तीनियों ने कड़ा विरोध किया और मस्जिदुल अक्सा मैदान जंग में तब्दील हो गई थी। फिलिस्तीनियों ने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वर्ष 1967 की जंग में इसराइल द्वारा बैतुल मुकद्दस के प्राचीन इलाकों पर कब्जे की बरसी के रूप में फ्लैग मार्च निकाला जाता है। ज़ायोनियों का ये दावा है कि पूरा बैतुल मुकद्दस शहर जायली ज़ायोनी शासन की राजधानी है। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ज़ायोनियों का फ्लैग मार्च बैतुल मुकद्दस में ज़ायोनी बस्तियों के विस्तार की भूमिका है। पिछले साल की शमशीर कुद्स जंग के बाद इसराइल को विभिन्न स्तरों पर कई संदेश दिए गए थे और इसका परिणाम ये निकला कि ज़ायोनियों ने भय की वजह से फ्लैग मार्च को ही रद्द कर दिया था। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि प्रतिरोध के मिसाइलों और रॉकेटों के जारी हमलों ने इसराइल को बहुत ज्यादा भयभीत कर दिया था, जबकि फिलिस्तीनियों के साथ इसराइलियों की झड़पों की वजह से इसराइलियों ने फ्लैग मार्च को ही कैंसिल कर दिया था। बहरहाल फिलिस्तीनियों ने फ्लैग मार्च से पहले मिसाइलों का परीक्षण और हमास तथा अन्य प्रतिरोधकर्ता गुटों ने अपने अपने बयानों से ये संदेश दे दिया कि इसराइल से बराबरी की लड़ाई का समय आ गया है और अब इसराइल के दिन और भी कठिन होने वाले हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान शनिवार को एक शिष्टमंडल के साथ आजरबैजान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर होने वाले समारोहों और बाकू में होने वाले टेक्नो फेस्ट में भाग लेने के लिए बाकू पहुंचे हैं। समीक्षा पेश करें साथी मिसम अब्बास।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान शनिवार को एक शिष्टमंडल के साथ आजरबैजान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों और बाकू में आयोजित होने वाले टेक्नो फेस्ट में भाग लेने के लिए बाकू पहुंचे हैं। इस यात्रा में तुर्की के विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री और उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट के प्रवक्ता उनके साथ हैं। अर्दोगान के बाकू पहुंचने और औपचारिक रूप से स्वागत से एक दिन पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने शुशी में अपने एक भाषण के दौरान कहा, कारबाख में आर्मेनिया से जो इलाके आजाद कराए गए हैं उनका क्षेत्रफल लग्जमबर्ग और लेबनान के आकार के बराबर है। हमने अजरबैजान के लिए कुछ बड़ी योजनाएं बनाई हैं। 28 मई को तुर्क राष्ट्रपति की बाकू यात्रा के बाद एक बार फिर उनके साथ शुशी का दौरा करेंगे। तुर्क राष्ट्रपति जो बातें सीरिया और इराक के बारे में करते हैं, कुछ इसी तरह की बातें उन्होंने अजरबैजान के बारे में भी दोहराई हैं। अर्दोगान का कहना था, तुर्की को अन्य देशों विशेष रूप से अजरबैजान से कोई लालच नहीं है, बल्कि उसका प्रयास सिर्फ दोनों राष्ट्रों के बीच एकता और एकजुटता है। अर्दोगान जो अपने देश को अभूतपूर्व आर्थिक संकट में फंसा चुके हैं, अंकारा और बाकू के संबंधों को दूसरे देशों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने इसी के साथ ये भी दावा किया कि अजरबैजान अनातोलिया की तरह तुर्कों की भूमि है। इससे पहले भी तुर्क राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अजरबैजान के पुनर्निर्माण के लिए रूस, ईरान और अन्य देश उनसे संपर्क कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इस तरह के उनके बयान का बाकू में स्वागत नहीं किया जाएगा, क्योंकि काकेशस क्षेत्र में तुर्की के लक्ष्य दो सरकारों और दो राष्ट्रों की मित्रता से आगे जाते प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में अजरबैजान के राष्ट्रपति का अर्दोगान के सामने झुकना भविष्य में उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा तुर्क राष्ट्रपति अगले साल होने वाले आम चुनावों में अजरबैजान के बारे में अपने इन दावों को भुना सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाकू की तुर्क अधिकारियों की एक के बाद एक यात्रा से भविष्य में इस देश की वर्तमान सरकार के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
भारत नियंत्रित कश्मीर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य होने वाली झड़प में कम से कम 2 अलगाववादी मारे गए। पुलिस ने बताया है कि मारे जाने वाले अलगाववादी हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे।
भारत प्रशासित कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के बिजबेहड़ा के एक निकटवर्ती क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में सक्रिय छापामार संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सदस्य हताहत हुए। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें गुप्तचर एजेंसियों से ये सूचना मिली कि इस क्षेत्र में अलगाववादी छापामार छुपे बैठे हैं, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने इस क्षेत्र का घेराव किया और अलगाववादियों को खोज निकालने के लिए एक अभियान आरंभ किया, जिसके बीच घेरे में आए अलगाववादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने भी दिया। इस तरह एक मुठभेड़ आरंभ हुई जिसमें 2 स्थानीय अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनके नियंत्रण से असला और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया गया। पुलिस के IGP ने कहा कि हताहत हुए छापामार अलगाववादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन उन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद के विरोध में आरंभ कर रखा है वो सफल पूर्वक जा रहा है और तब तक ये अभियान जारी रहेगा जब तक उनके अनुसार अलगाववाद और आतंकवाद का समाप्त नहीं होता है। IGP ने कहा कि मैं एक बार फिर यहाँ के युवकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हिंसा का दार छोड़ें और अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक ढंग से गुजारें। उसके लिए पुलिस उनकी भरपूर सहायता करेगी। इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महिला अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कहा है कि नई दिल्ली की कश्मीर नीतियाँ इंतहाई गंभीर है। उन्होंने कहा कि इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। दक्षिणी कश्मीर में अपने पार्टी के एक युवा नेता वहीद परा की रिहाई के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर में यहाँ स्थिति पहुंची है कि अपने लोगों की लाशें लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ रहा है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि हैदरपोरा इनकाउंटर, जिसके बारे में ये अब बात सिद्ध हो गई है कि वो एक फेक इनकाउंटर था, बानिहाल के एक निवासी की लाश को हाईकोर्ट ने उनके रिश्तेदारों के सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये आदेश اس پر عمل ہونا چاہیے، محبوبہ مفتی نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا۔
دیکھیں یہ تو ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنے بچوں کی لاشیں لینے کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے اور پھر کورٹ کی ڈائریکشن سے ہمیں اپنے بچوں کی لاش ملتی ہے۔ اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے، پر پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا، انسانیت کے ناطے جو فیصلہ دیا ہے اس کو میں ویلکم کرتی ہوں۔
اس بیچ ایک بار پھر جموں کشمیر پرشاسن نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں ترقی کا جو باب آرمبھ ہوا ہے وہ سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا۔ سبتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل، پر اس سے پہلے آپ سنیے ساپتاہک کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
پریہ شروتاؤں، کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انیہ کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت کی تلاوت سنیں۔
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔
ہم نے مٹی سے ہی تمہاری رچنا کی ہے اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور ایک بار پھر تمہیں مٹی سے باہر نکالیں گے۔
اس سے پہلے ہم نے کہا کہ قرآن مجید نے ایک ایشورواد اور پرلے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے انوسار ہی کچھ آیتوں میں دھرتی پر ایشور کی انوکمپاؤں کا الیکھ کیا ہے کہ جو اننیہ ایشور کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت بھی جو پرلے کے بارے میں ہے دھرتی کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہی دھرتی جو تمہارے جیون اور پرگتی کا سروت ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے شریر کو امانت سوروپ لے لے گی اور پرلے میں واپس کر دے گی۔
حضرت علی علیہ السلام نماز کے سجدوں کو اس آیت کی اور سنکیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے سجدے کا ارتھ یہ ہے کہ ایشور میں آرمبھ میں مٹی سے تھا۔ ویکتی جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس بات کی اور سنکیت ہوتا ہے کہ پربھور تو نے مٹی سے میری رچنا کی ہے۔ دوسرے سجدے کا ارتھ ہوتا ہے پربھور تو مجھے پناہ مٹی میں لوٹائے گا، جبکہ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو مانو وہ ایشور سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو پرلے میں مجھے پناہ مٹی سے باہر نکالے گا۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ یدی دھرتی میں منشیہ کا آرمبھ و انت مٹی سے ہے تو پھر اتنا گھمنڈ و اہنکار کس لیے؟
مرتیو جیون کا انت نہیں ہے، دھرتی ہمارے شریروں کو پرلے تک کے لیے امانت کے روپ میں سرکشت رکھے گی۔
آئیے اب سورہ طٰہٰ کی 56ویں اور 57ویں آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى۔
اور نشچت روپ سے ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں، کنتو اس نے سبھی کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا، ہے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو سے ہمیں اپنی دھرتی سے باہر نکال دو؟
ان آیتوں میں پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ ہونے والی بات چیت کا کرم آرمبھ ہوتا ہے۔ آیتیں کہتی ہیں کہ فرعون نے لاٹھی کے اجگر میں پریورتت ہونے اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے چمکنے جیسے وبھن پرکار کے چمتکاروں کو جو حضرت موسیٰ کی ستیتا کا پرمان تھے دیکھا، کنتو سبھی کا انکار کر دیا۔ اس نے انہیں ایک ایسا جادوگر بتایا جو اس کی سرکار کو گرا کر سنگھاسن پر سوئم نینترن کرنا چاہتا ہے۔
فرعون کی درشٹی میں ایک ایشورواد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمنترن اس کی ستہ کے لیے ایک پرکار کی دھمکی تھی، کیونکہ اس کے شاسن سے بنی اسرائیل کا سوتنتر ہو جانا اس کے سنگھاسن کو ڈواڈول کر سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے شاسن میں داس تھے اور اتینت کٹھن و بھاری کام انہی کے حوالے کیے جاتے تھے۔ یہی کارن ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر دیش کی سرکشا کو بھنگ کرنے کا آروپ لگایا۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ چمتکار لوگوں پر واستوکتا اسپشٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کنتو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دویش اور ہٹ دھرم کے کارن اتینت اسپشٹ ایشوریہ چمتکاروں کو بھی سویکار نہیں کرتے اور انہیں جادو ٹونا بتاتے ہیں۔
اتیاچاری سرکاریں سدیو اپنے ویرودھیوں پر سماج کی شانتی و سرکشا کو کشتی پہنچانے کا آروپ لگاتی ہیں تتھا راشٹروادی بھاوناؤں کو ان کے ویرودھ پریوگ کرتی ہیں۔
آئیے اب سورۃ طٰہٰ کی آیت کرمانک 58, 59 اور 60 کی تلاوت سنتے ہیں۔
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
تو فرعون نے کہا کہ نشچے ہی ہم بھی تمہارے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے بیچ ایک سمتل استھان پر نردھارت جگہ ٹھہرا لو، جس کا الگھن نہ تو ہم کریں اور نہ ہی تم۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا دن اتسو کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھا ہو جائیں۔ تو فرعون دربار سے لوٹ گیا اور اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جٹائے تتھا نردھارت استھان پر آ گیا۔
یہ آیتیں نگر کے پرمکھ چوراہے پر فرعون کے جادوگروں کے اکترت ہونے کی گھٹنا کا ورنن کرتی ہیں، اور وہ بھی اس سمے کے سب سے مہتوپورن سماروہ کے افسر پر کہ جب سبھی لوگ وہاں اپستھت تھے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں اس گھٹنا کا ادھک وستار سے ورنن کیا گیا ہے۔
سورہ اعراف اور سورہ شعراء کی آیتوں میں ورنت گھٹنا کرم کے انوسار فرعون نے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام سے بحث کے بعد اپنے سلاحکاروں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور ان سے کہا کہ وہ وبھن استھانوں سے مصر کے سبھی جادوگروں کو راجدھانی بلائیں اور انہیں پاریتوشک کا لوب دے کر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے پروتساہت کریں۔ وہ اپنے اس کاریہ دوارا چاہتا تھا کہ سماج میں حضرت موسیٰ کا اپمان بھی ہو جائے اور وہ لوگوں کے بیچ واپس نہ لوٹ سکیں، اور ساتھ ہی وہ ایک بار پھر لوگوں کے سمکش اپنی فرعونی شکتی کا پردرشن کرے۔
وچتر بات یہ ہے کہ فرعون نے اپنے سبھی ہتھ کنڈوں کا پریوگ کیا کہ شاید حضرت موسیٰ و ان کے بھائی ایشور کی اور نمنترن دینا چھوڑ دیں، کنتو جنہیں اپنے مارگ کی ستیتا اور ایشوریہ سمرتھن و مارگ درشن پر پورا وشواس ہوتا ہے، وہ نہ کیول یہ کہ بھیبھیت نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کے بیچ اپستھت ہونے کے لیے اپنی تیاری کی بھی گھوشنا کرتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون اس افسر سے فرعونی شاسن کو اپمانت کرنے اور اپنی ستیتا کو سدھ کرنے کے لیے لابھ اٹھانا چاہتے ہیں، اور آج کل کی بھاشا میں اس دھمکی کو اپنے لیے ایک بڑے افسر میں پریورتت کرنا چاہتے ہیں۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ عید اور اسی پرکار کے بڑے دھارمک سماروہوں سے ایشوریہ واستوکتاؤں کو لوگوں کے سمکش پرستوت کرنے ہیتو اچت ڈھنگ سے لابھ اٹھایا جا سکتا ہے۔
لوگوں کے سامنے شاسترارتھ اور دھارمک چرچا ان شیلیوں میں سے ہے جنہیں فرعون کے سمبندھ میں حضرت موسیٰ کے ویوہار سے سیکھا اور ویوہارک بنایا جا سکتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ آج کل
دوستو، کارکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ مریم مہردادی اور روی سزیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کارکرم میں ہم ایران کے آدھونک ابابل ڈرون کے بارے میں چرچا کریں گے۔
دوستوں، پچھلے تین دشکوں میں اسلامی گڑتنتر ایران نے سینے اپکرنوں کے شیتر میں جس استر کا وکاس اور وستار کیا ہے، اس سے جہاں دشمنوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوئی ہیں، وہیں دنیا بھی ایران کی پرگتی دیکھ کر آشچریہ چکت ہے۔ کتنے کڑے پرتیبندوں کے باوجود ایران لگاتار اپنی سینے طاقت کو کیسے بڑھا رہا ہے۔ وہیں ایران ان سب کی پرواہ کیے بنا نرنتر سینے اپکرنوں کے شیتر میں آتم نربھرتا کی اور قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایران میں بنے ڈرون ویمان وشیش روپ سے پچھلے ایک دشک میں شیتر میں سنگھرشوں کی گھٹناؤں میں ہوئی ابھوتپورو وردھی کے کارن اس سمے سینے اپکرنوں وشیش کر اٹیک کرنے والے ڈرون، جاسوسی ڈرون، لکشوں کی پہچان کرنے والے ڈرون اور نگرانی کرنے والے ڈرونوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ نگرانی اور پہچان تتھا لکشیکرن میں ایک اچھا مولیہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈرون ویمانوں کی حالیہ ورشوں میں یدھ کے شیتر میں اپیوگتا ثابت ہوئی ہے۔ ڈرون کے ذریعے بڑے بڑے سین آپریشنوں کو سفلتا پوروک انجام بھی دیا گیا ہے۔ ایران اس سمے ڈرون کے شیتر میں دنیا کے 10 شیرش طاقتور دیشوں میں سے ایک ہے۔ ایران دنیا کے ان گنے چنے دیشوں میں سے ایک ہے جہاں وبھن پرکار کے اتیادھنک ڈرون ویمانوں کو ڈیزائن اور ان کا وکاس اور وستار کیا جاتا ہے۔
اس سمے پوری دنیا اس بات کو سویکار کرتی ہے کہ پرتیبندوں کے باوجود ایران نے وبھن رکشا اپکرنوں کے ڈیزائن اور اتپادن میں مہتوپورن پرگتی کی ہے، وشیش روپ سے ڈرون کے کھیتر میں۔ ایران کی پرگتی حیران کرنے والی ہے۔ وشیشوں کا ماننا تو یہ ہے کہ ایران دنیا میں ڈرون کے 5 سب سے اچھے اتپادکوں میں سے ایک ہے۔ آج اسلامی گنتنتر ایران کی سینا دوارا اپیوگ کیے جانے والے سبھی ڈرون دیش کے اندر پوری طرح سے اتپادت ہیں اور ان کا کوئی بھی حصہ آیات نہیں کیا جاتا ہے۔ ڈرون کے کھیتر میں دنیا بھر میں پرسدھ ایرانی ڈرون ویمانوں میں سے ایک ڈرون ابابل نام سے بھی ہے۔ ابابل نامک ڈرون ویمانوں سے ابابل 3 ڈرون ویمانوں نے تو وبھن سین ابھیانوں میں سفلتا پوروک بھومیکا نبھائی ہے۔ ابابل 3 ڈرون کا آدھیکارک طور پر 2014 میں اناورن کیا گیا تھا اور اسے ایرانی سشستر بلوں کو سونپ دیا گیا تھا۔ 18 اپریل 2022 کو تہران میں آیوجت سینیہ پریڈ کے مہتوپورن اور وششٹ پہلوؤں میں سے ایک ایران کے اسلامی گڑراجیہ کی سینا کی اکائیوں سے سمبندھت ڈرون کی ویاپک اور وویدھ اپستھتی تھی، جس نے اس پریڈ کو ایک وشیش پربھاو دیا۔ اس بھویہ پریڈ میں ابابل 5 نامک نئے ایرانی ڈرون کو پہلی بار پردرشت کیا گیا، جس کے بارے میں پہلے کوئی آدھیکارک خبر نہیں تھی۔ پورو گھوشنا کے بنا ابابل 5 کے اناورن نے گھریلو اور ودیشی وشیشوں اور میڈیا کے دھیان کو اپنی اور آکرشت کیا۔
دوستوں، ابابیل 5 نامک اتیادھونک ایرانی ڈرون جسے پہلی بار تہران میں آیوجت سین پریڈ میں سامنے لایا گیا تھا، یہ ڈرون ٹوہی اور حملے کی شمتاؤں والے ڈرونوں کا ایک سار ہے جو کئی پرسدھ ایرانی ڈرونوں کی تلنا میں مہتوپورن اور پربھاوی انتی کی ایک شنکھلا کا پرتندھتو کرتا ہے۔ واستو میں ابابیل ڈرون کی شنکھلا سبھی سفلتاؤں اور اتکرشٹ پریچالن انوبھووں کے ساتھ پہلی، دوسری اور تیسری پیڑھی تک سیمت نہیں ہے۔ 18 اپریل 2022 کو سینا دیوس پر تہران میں آیوجت پریڈ کے دوران ابابیل 5 کے پردرشن کے ساتھ یہ اسپشٹ ہو گیا کہ پرکریا ابابیل ڈرون ویمانوں کی شنکھلا رکنے والی نہیں ہے اور یہ اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی۔ سین پریڈ کے دوران سین ٹرکوں پر 3 ابابیل 5 ڈرون پردرشت کیے گئے۔ پردرشت کیے گئے ڈرون کے ونگ کے نیچے 2 راؤنڈ الماس میزائل استھاپت کی گئی تھیں اور ان دوسرے ڈرونوں میں پرتیک ونگ کے نیچے ورٹیکل کلاس سے 3 راؤنڈ گائیڈڈ میزائل استھاپت کی گئی تھی۔ کچھ وشیشجوں کا ماننا ہے کہ ابابیل 5 ڈرون مہاجر 6 ڈرون کا ایک چھوٹا سنسکرن ہے جو 6 اسمارٹ بموں اور ایک ورٹیکل سیریز پوائنٹ اینڈ شوٹر لے جانے میں سکشم ہے۔ ابابیل 5 ڈرون ویمان کی اڑان رینج 480 کلومیٹر سے ادھک ہے اور یہ لگ بھگ 8 کلومیٹر کی سیما کے ساتھ ایک قائم ورٹیکل بم اور 4 الماس 2 میزائلوں سے لیس ہے۔
ابابیل 5 ڈرون کی باڈی کے آکار دیکھنے پر یہ سپشٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی باڈی کے پچھلے حصے میں، وشیش روپ سے پونچھ میں، وہی پرسدھ ایچ آکار کی ڈیزائن ہے جو ابابیل 3 کے شروعاتی ماڈل میں استعمال کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایٹلس کی انت ڈیزائن ہے، وہی اس ڈرون کی باڈی کا آگے والا حصہ جسے اس کی ناک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ڈیزائن مہاجر 6 ڈرون کی تلنا میں ادھک انت ڈیزائن ہے۔ ڈرون کی تصویروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پنکھوں کا سائز بھی پہلے کے ڈرون سے بڑا ہے اور اس ڈرون میں پورٹیبل وسفوٹک پدارتھوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی کشمتا بھی بڑھائی گئی ہے۔ اس ڈرون کی تکنیکی وشیشتاؤں کی ابھی ادھیکاری گھوشنا نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ابابیل 5 ڈرون میں روٹیکس 914 HP 115 والا شکتیشالی انجن کا اپیوگ کیا گیا ہے۔ اس کے انجن کی وشیشتائیں لگ بھگ مہاجر 6 کے انجن کی وشیشتاؤں سے زیادہ نزدیک ہے۔ ابابیل 5 لڑاکو ایوم ٹوہی ڈرون جو ڈیزائن اور آیاموں میں پرسدھ مہاجر 6 ڈرون کے سمان ہیں۔ اس کے پرتیک ونگ کے نیچے ہوا سے سطح پر مار کرنے والی 4 اینٹی ٹینک الماس نامک گائیڈڈ میزائلیں لیس ہیں۔ اس کی وشیشتا یہ ہے کہ اس میں ایک بار کسی لکش کو نردھارت کر دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے لکش کو سوئم بھیجتی ہے۔
دوستوں، اس ڈرون کے بارے میں ایک اور الیکھنیہ بات یہ ہے کہ اس ڈرون کا فرنٹ لینڈنگ گیئر سامنے آئی تصویروں کے آدھار پر دھڑ کے اندر واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ اسپشٹ روپ سے درشاتا ہے کہ ابابیل 5 ڈرون کی ڈیزائن میں نئی سوچ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس ڈرون کے اڑنے کی رفتار میں الیکھنیہ انتر آیا ہے۔ ابابیل 5 ڈرون پہلے کے ڈرونوں کے مقابلے میں بہت تیز گتی سے اڑان بھر سکتا ہے۔ حالانکہ ابابیل 5 ڈرون کے بارے میں ابھی بہت ساری جانکاریاں آدھیکارک طور پر سامنے نہیں آئی ہیں اور نہ ہی اس کی وشیشتاؤں کے بارے میں آدھیکارک طور پر کوئی گھوشنا کی گئی ہے، لیکن سامنے سے جو چیز دکھتی ہے، جیسے اس کا بڑا آکار اور ادھک گولہ بارود لے جانے کی شمتا کو دیکھتے ہوئے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابابیل 5 مہاجر 6 ڈرون کے مقابلے میں زیادہ دیر تک اڑان بھر سکتا ہے اور ساتھ ہی اس میں اڑان کی اونچائی اور پورٹیبل وسفوٹک پدارتھوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی شمتا بھی ودھت روپ سے مہاجر 6 کی تلنا میں ادھک ہے۔ ایران میں ڈرون کے شیتر میں ہوتا وکاس، جیسے مہاجر 6 یا ابابیل 5 شنکھلا، واستو میں یہ درشاتا ہے کہ ایران نے ہر طرح کے کڑے سے کڑے پرتیبندوں کے باوجود इस क्षेत्र में न केवल प्रगति की है बल्कि उसने अत्याधुनिक ड्रोन विमानों को अपनी सशस्त्र सेना के हवाले करके उनकी ताकत को दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं के बराबर कर दिया है। साथ ही आधुनिक ड्रोनों की सामने आती श्रृंखला ये भी दिखाती है कि ईरान का रक्षा उद्योग इस क्षेत्र में एक प्रभावी और उपयोगी रक्षा रणनीति को अपनाने और उसे जारी रखने का संकेत दे रहा है।
दोस्तों, अनुभवों से ये साबित होता है कि लड़ाकू और टोही ड्रोन विमानों की हालिया वर्षों में उपयोगिता काफी बढ़ गई है। युद्धों में ड्रोन विमानों की बढ़ती मांगों और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हालिया कुछ वर्षों में बहुत अधिक महसूस किया गया है। वर्ष 2020 में अजरबैजान और अरमनिस्तान के बीच होने वाला युद्ध हो या फिर 2022 में जारी यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध हो, इनमें ड्रोन विमानों की बढ़ती भूमिका साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा ईरान का विशाल भूगोल, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों और सीमाओं में सीमा निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की आवश्यकता को और जरूरी बना देता है। साथ ही अपराधियों और नशीली दवाओं के तस्करों के साथ साथ आतंकवादी समूहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों में भी ड्रोन विमानों ने अहम भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना की ड्रोन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि इस प्रकार के क्षेत्र को ड्रोन के साथ कवर करने की व्यापक योजना को इंगित करती है। साथ ही सीमा के एक बड़े क्षेत्र की कम लागत में लंबी अवधि के लिए अबाबिल 5 टोही ड्रोन के जरिए निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा इस ड्रोन को विभिन्न प्रकार के वर्टिकल बमों या अल्मास गाइडेड मिसाइलों से लैस करने से ये सैन्य अभियानों जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं हमले की शक्ति दो बराबर कर देता है।
दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सभा भी अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।